Yeah, man, kan jeg også godt forstå. 1, 2, 3.
कीर्तन हो, गोविंद के नाम का कीर्तन हो, उसमें में सभी लोगों को मुख खोल करके कीर्तन करना चाहिए। उसे होता क्या है, रा कहने से रा मुख खुल जाता है और म कहने से म मुख बंद हो जाता है। तो जिसमें हम लोग राम कहेंगे तो वो जितने पाप हैं वो सब निकल जाते हैं, और जो लोग कृष्ण नाम नहीं करते हैं, कीर्तन नहीं करते हैं, उनके मुख में वो प्रवेश कर जाते हैं। और जब आदमी म कहता है तो मुख बंद हो जाता है, तो इसके मतलब जो लोग कीर्तन नहीं करेंगे उनके अंदर में घुस जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए सब लोगों को कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि दिन में बहुत अवकाश कम मिलता है। दिन भर हम चटर और पटर में लगे रहते हैं संसारी कामों में, इसलिए जब कीर्तन भगवान कहो, विशेष करके मंदिर में संसार के समस्त कामों को भूल करके सब बातों को भूल करके उस समय दो मिनट के लिए चित्त को स्थिर करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। अब चलिए, अभी मैंने कि अंग्रेजी के ध्वनि में कुछ कृष्ण का कीर्तन करें, जो ये पश्चात देश वाले लोग भी कुछ कीर्तन कर सकेंगे और आप लोग भी और हम लोग भी इनका सहयोग करेंगे पीछे से। Very beautiful. Thank you so much.
Jnanati Nirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunu Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhasya कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरि वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेदे सत्यवत्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि से गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम प्रव्रजंतमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया त्वर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्मि हम लोगों ने श्रीमद्भागवत के प्रसंग में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया और प्रहलाद महाराज जी के चरित्र से भगवत भक्ति के महात्म के संबंध में हम लोगों ने वर्णन किया। कोई मनुष्य जन्म लेकर भगवान नाम का कीर्तन नहीं करता तो यह निश्चित है तू अपने जीवन में कभी भी सुखी और शांति नहीं हो सकता। भले ही हम समझें कि हम बहुत धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं किंतु मरने के समय में जिस समय के जम के दूत आएंगे उस समय क्या होगा, उस समय के लिए भी तो सोचो। इसलिए भगवान का नाम अनजान में जैसे तैसे छिपते समय में चलते फिरते उठते समय में भी भगवान का एक नाम भी यदि जीवन में यदि आ जाएगा तो उसका जीवन सार्थक है। लोग अधिक दिन जीवित रहेंगे उन लोगों के लिए भगवान की कथाओं का श्रवण भगवान का नाम का कीर्तन करना उनकी कथाओं का स्मरण करना उनकी लीलाओं का उनका पूजन अर्चन वंदनम ये सब करना चाहिए। कुछ समय निकालो ऐसा दिन नहीं रहेगा सब समय। कुछ व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालो वही तुम्हारे लिए पूंजी रहेगी और सब हाथ से निकल जाएगा। अपने जीवित रहते हुए जब तक शरीर में ताकत है जब तक इंद्रियां ठीक हैं तब तक भगवान की कथाओं का स्मरण करें। सुखदेव गोस्वामी जी ने नौम स्कंद तक की बड़ी रोचक और बड़ी सुंदर प्रभावशाली कथाओं का वर्णन किया। समय नहीं है यदि कम से कम तो एक महीना यदि समय होता तो कुछ कुछ मैं आउटलाइन दे सकता था। एक महीना कम से कम जो कथा 7 दिन की होती है वो कथा राजसी होती है किसी अपने लाभ के लिए नुकसान के लिए रोग को दूर करने के लिए लोग ऐसा करते हैं ये सबसे कनिष्ठ है। जो कथा किसी तरह से समझा बुझा कर जागतिक किसी लाभ और हानि के लिए नहीं कर अपने जीवन के उत्थान के लिए शांति और सुख के लिए किया जाता है एक महीने तक अच्छी तरह से वो उत्तम कहलाती है कथा। बिना लेन देन के मैं कथा कह रहा हूं और यदि मैं ये चाहूं ये लोग हमको कुछ पैसे दे जाएं तो वो बेच देना हो गया वो भागवत की कथा नहीं हुई। आजकल भारतवर्ष में ये व्यवसाय हो गया है। आप लोग वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकर करके पैसे लाते हैं और वो भागवत कह करके कथा लाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, उस कथा का मूल्य वहीं पर समाप्त हो जाता है, पैसा लिया दे दिया। उस कथा के द्वारा आत्मकल्याण नहीं होगा। जो व्यक्ति किसी लाभ के बिना केवल आत्मकल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कथा होती है, वही सात्विक कथा है। और जो कथा रोज प्रतिदिन अपने जीवन में उतारते हैं और सुनते हैं, एक दिन नहीं जीवन भर, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभारिका। यहां तक के मुक्ति हो जाने के बाद भी आत्मा अजर अमर है। यदि बैकुंठ लोक में भी चली गई आत्मा, गोलोक वृंदावन में भी गई, हे रसिक और भाव, संसार से मुक्त जन इस कथा का आस्वादन करते हैं। इस जगत के लोग नहीं आस्वादन कर सकते, थोड़ा थोड़ा रुचि हो सकता है किंतु आस्वादन नहीं कर सकते। जब तक इस संसार में जितनी हमारी कामनाएं वासनाएं हैं दूर ना हो जाएं, तब तो उस कथा में रुचि नहीं आ सकती। क्यों? एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, समझती हैं? एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, एक ही रहेगी। या तो संसारिक कामनाएं वासनाएं रहेंगी, नहीं तो भगवान की लीला कथाएं रहेंगी। इसलिए संसारिक लोग इसका आस्वादन परीक्षित महाराज जी जैसा नहीं कर सकते, किंतु धीरे धीरे रुचि के साथ में इसका आदर के साथ में, श्रद्धा के साथ में श्रवण करना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी से कहा, 6 दिन होने जा रहे हैं, अब 7वां दिन आने वाला है, कुछ पानी पी लो। पानी पिएगा, कुछ फल का रस ला दूं, मंगा दूं? नहीं नहीं, मुझको जरूरत नहीं है। अब आप जो हरि रस मदिरा पान करा रहे हैं, निगम कल्पतरु का रस का जो है वो हमको जो दे रहे हैं, अब हमको सांसारिक भूख और प्यास नहीं है। मैं अपना समय एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, आप भगवान की लीला कथाओं को आप मुझसे श्रवण कराएं। अर्जुन ने कहा, निवृत्त तरसई उपगीयमाना औषधा स्वप्न मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात विरज्जेत बिना पशुपुधा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को कहा, गुरु जी यह कहना चाहता हूं, निवृत्त तरसई उपगीयमाना, संसार के लोग बड़े दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं संसार में। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जी हमारे शरीर में रोग नहीं है और हमको मरना नहीं है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में सब लोगों को कोई न कोई असुविधाएं संसार में है, बहुत से प्रॉब्लम्स है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ। भारतवर्ष में बहुत सी समस्याएं हैं, यहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं। अभी गायों की समस्या एक बड़ी भारी विकट समस्या बन रही है, गायों को मांस खिला गया, नहीं चाहिए था, उनका जो स्वभाव नहीं उसके विपरीत देने से वह चीज कुछ गड़बड़ी हो जाती है। भगवान ने गायों को, हिरणों को, मनुष्यों को मांस और मछली खाने के लिए, अंडे खाने के लिए नहीं बनाया, उनका बनावट ही नहीं ऐसा है। शेर का, भालू का, यह सब का वैसा है, मनुष्यों के लिए, गायों के लिए नहीं। गायों के लिए विपरीत भोजन दिया गया और उसका यह नतीजा हुआ कि उनका दिमाग गड़बड़ हो गया, कोई बीमारी हो गई। और आज ये प्लान बन रहा है कि ये लाखों गायों को बलि दी जाए, काट दी जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, नहीं तो आदमी मरेंगे। अरे मैं तो कहता हूं उन गायों को मारने की जरूरत, उनकी चिकित्सा की जरूरत है, बल्कि उनको मर्डर करने की जरूरत है, उनको कोर्ट में केस करके कि इनको किसने ऐसा किया। वो लोग दोषी हैं, गायें दोषी नहीं हैं। आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको गला काट करके मार देंगे? उसकी चिकित्सा तो होनी चाहिए। गायें क्या क्यों दोष, उनको विपरीत भोजन दिया गया इसलिए वो गिलती हैं, वो अपराधी हैं जो उन गायों को दिया, गायें तो माताएं हैं। इससे स्वयं भगवान होकर के और इन गायों को माता के समान में पालन किया। यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा जी बेटा तेरे लिए एक जूता बना दू जिससे कि तुम जाएगा तो कांटा नहीं लगेगा, और एक छाता दे दू। कृष्ण ने मैया को कहा मैया गैया मेरी पूज्य है, मैं इनका नौकर हूं दास हूं, गायों के पैरों में जूता पहले दे और उनको छाता पहले दे और तब मुझको पहले पीछे से देना, गायें हमारी प्राण हैं। कृष्ण का कितना गौओं के प्रति था, जिस देश में जिस समाज में जिस राष्ट्र में गायों को गायों का आदर नहीं है, जिस देश में वेदों को तत्वों को जानने वाले प्रतिष्ठित वैष्णवों का आदर नहीं है, यहाँ पर भगवान का कोई आदर नहीं है, वेदों का शास्त्रों का रामायण और भागवत का आदर नहीं है, कृष्ण और राम का आदर नहीं है, शंकर जी का आदर नहीं है, इनके विपरीत चलता है लोग, विशेष करके गायों के विपरीत जो चलता है वो सभी राष्ट्र ध्वंस हो जाता है। कृष्ण ने स्वयं ऐसा कहा है गोसु विप्रेशु साधुसु, इनके प्रति यदि कोई बुरा आचरण हुआ वो राष्ट्र ध्वंस होने के कागार पर, ऐसा समझिए। गायें माताएं हैं, गाय चौपाया नहीं है, जानवर नहीं है, बल्कि हम वो चार पैर वाले जब चलते हैं तो हम लोग जानवर हैं, जो भगवान का भजन नहीं करता आदर नहीं करता हमारे इन सब ग्रंथों का आदर नहीं करता। आप लोग जानते होंगे दिलीप रघुवंश में रामचंद्र जी के वंश में पहले हुए थे, उनको बेटा ही नहीं था, वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ ने कहा जी ठीक है, वशिष्ठ जी से ने कहा मैं अपनी कामधेनु गौवा को तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तुम इसकी सेवा करो, इसको रोज स्नान कराना भोजन कराना इसके पैर दबाना, गाय को चराने के लिए जा रहा तुमको जरूर बेटा दे देगी। चराने लगे, कुछ दिनों के बाद में जब करीब एक वर्ष हो गया तो गाय को लेकर के खुद चराने के लिए गया राजा, जब वन में गए इतने एक सिंह ने आक्रमण किया और गैया को यहां पर पकड़ लिया, महाराज दिलीप धनुष बाण उठाया अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा, एकदम ऐसे किया, सिंह डर गया, बोला जी से अरे हमको क्यों मार रहे हो, अतः तुम गैया को क्यों मार रहा है, अतः गैया तो मेरी भोजन है, मैं इसलिए माता तो मैं देश का राजा हूं, गायों को ब्राह्मणों को वेद को शास्त्रों को रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, नहीं तो तुम मुझे भोजन दे करके तब गाय को छुड़ाओ, चाहे तो क्या भोजन चाहता है, तो मैं तो रक्त और मांस खाने वाला हूं, मुझको रक्त और मांस चाहिए तो तुम मुझे ले लो इसके बदले, मैंने अपने को समर्पण कर दिया। बाघ ने सिंह जो था अपना स्वरूप देखा, जो मैं धर्म हूं, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, और ये मेरी धर्म की पत्नी ये गैया है, जगत के विश्व की मैया है, तो मैया और हमसे अभी बर ले लो, क्या चाहता है, मैं एक सुंदर पुत्र चाहता हूं, अजय जाओ तेरे वंश में तुमका पुत्र ऐसा होगा जो तेरे वंश में आएगा भगवान स्वयं आएंगे तुम्हारी इसके द्वारा गौओं की सेवा के द्वारा, गैया को एक जानवर मत समझो, जगत की जननी है, उनके रोम रोम में अनंत असंख्य देवता लोग भरे पड़े हैं। रामचंद्र जी का भी ऐसा ही, जब वनवास को जाने लगे वो गायों की सेवा करते थे रामचंद्र जी, लाखों गायें उनकी थी, सोचा जब तो मैं वनवास जा रहा हूं उन गायों की सेवा किसको दूं, उन्होंने एक ब्राह्मण आया, महाराज जी आप जा रहे हैं मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं, क्या चाहते हो, मैं कुछ गाय चाहता हूं सेवा करने के लिए, ठीक, उन्होंने कहा जी तुम्हारा जो डंडा है इसको चलाओ उप जोर से, जहां तक फेंक देगा उसके अंदर में जितनी लाख गाय आएंगी मैं सब तुमको दे दूंगा, उसने डंडा उठाया और सरजू की तरफ में फेंका और वो सरजू के तिर पर जाकर के वो गिरा डंडा, इसके बीच में लाखों करोड़ों गायें सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे फुदकते हुए कुत्ते हुए बछड़ों के सहित बहुत थान भरा हुआ दूध नई नई गायों को उन्होंने दान कर दिया। और भी देखते हैं गायें, गायों का शास्त्र में गोभी अर्चय, गायों का अर्चन होना चाहिए, पूजन होना चाहिए, जिस घर में गायों का आदर नहीं है वो घर घर नहीं है। तो इसके लिए जिनके दिमाग में ये सब चीजें नहीं है, पश्चात देश में गायों को अपना भोजन समझने वाले लोग हैं, उन लोगों को ये चीज बतलानी चाहिए। कोई एजिटेशन किया जाए, उनको समझाया जाए, जिसने दोष किया जैसे कि गायें खराब हो गई, उनका दिमाग खराब हो गया, जैसे रोग फैल रहा है। आई मैं यहाँ आया, मैं रोज भाग बस में देसी सुंदर गाय का थोड़ा सा दूध लेता था ठाकुर जी को देकर, यहाँ मैं नहीं लेता। मैं सोचता हूँ इन गायों को उन लोगों ने न जाने बीस क्या दिला दिया, और उनका दूध भी तो वैसा ही होगा, हमारा भी हृदय अपवित्र हो जाएगा। ये देश का अनिष्ट कर रहे हैं ये लोग, आधुनिक वैज्ञानिक लोग, सामान्य एक के लिए। इसलिए इसके लिए कुछ आवाजें उठनी चाहिए, गायों की रक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैं अपने आप पुनः अपने प्रसंग में आ रहा हूं। इस देश में गायों की रक्षा नहीं, माताओं और बेटियों की रक्षा नहीं, जिस देश में पूर्वजों का आदर नहीं, बुढ़ों लोगों का आदर नहीं, वो देश दिन अधिक दिनों तक वो राष्ट्र नहीं चल सकता है। इसलिए उनका आदर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं निवृत्त तर्षई उपगीयमानात् बहुसधास्तोत्सि मनोभिराम। जगत में सभी लोग दुखी हैं, बहुत से जगत में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं इस जगत में रहते समय। संसार में जो मर और जी रहे हैं, जननपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमनम, यही भव रोग है, सभी इसमें भोग रहे हैं। यदि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मिले निवृत्त तर्षई उपगीयमानात्, संसार के भोगों से परम विरक्त हैं, जिनको संसार का कोई चीज का लोभ नहीं, भगवान ने परम अनुरक्त हैं, ऐसा कोई व्यक्ति यदि मिले, कैसा? सुखदेव गोस्वामी जैसा, नारद जी जैसा, वशिष्ठ जी जैसा, सुखदेव गोस्वामी जैसा। तो निवृत्त तर्षई, जिनकी भूख प्यास मिट चुकी है, किस चीज की? संसारिक वासनाओं और कामनाओं की भूख मिट चुकी है, उनको इस संसार से कुछ लेना नहीं, ऐसे परम विरक्त भगवान के रसिक, हरि कथाओं के रसिक, परम भाव यदि मिले तो उन मुख से भगवान की कथाओं का सुनना ही भौरों के लिए परम औषधि है। इसे बढ़कर के और कोई दवा नहीं है। और इसका मूल्य क्या है? अभी डॉक्टर के यहाँ थोड़ी सी कुछ लेकर के शिकायत जाएंगे, कहीं से एक इतना डॉलर या इतना पाउंड अभी जमा करो, तब अभी नंबर में आएगा, एक सप्ताह का समय चाहिए। जगत का कुछ भी मूल्य नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन संसारिक कोई कामना वासना है नहीं, केवल बड़े दयालु हैं। इनके मुख से जो भगवान की कथाएं निकलती हैं वो भवरों के लिए परम औषधि है। कैसी औषधि? औषध कड़वी होती है, शुगर कोटेड होती है, कुछ गर्मी भी करती है, कुछ रिएक्शन भी करेगी, किंतु ये कथाएं जो हैं ये कोई भी रिएक्शन नहीं करती, सुनने में भी परम मनो। अभी सुना ना, हरे कृष्ण उन्होंने किया, कितना सुंदर, सुनने में भी मधुर। और यदि उसका अर्थ का ज्ञान हो और हृदय में यदि जाए कृष्ण की कथाएं, तो हृदय को निर्मल कर देंगी और जन्म जन्मांतर के लिए हम सुखी और शांति हो सकते हैं। ऐसी ये कथाएं हैं। जो इन कथाओं का सेवन नहीं करता, जो इन कथाओं को श्रवण नहीं करता, तो उनके लिए गति क्या कर रहे हैं? क उत्तम श्लोक गुणानुवादात। जो लोग ऐसी कथाओं का श्रवण नहीं करते, मनुष्य जन्म लाभ करके भी विरजित बिना पशु गुना, वही आत्मघाती अपने को सुसाइड करने वाले लोग जो हैं, वही इन कथाओं को नहीं सुनते। जो लोग पशुओं का वध करते हैं, जो लोग दूसरे का हत्या करते हैं, वो हत्यारा नहीं है उतना, जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते हैं, जन्म जन्म उनका बिगड़ जाता है। ये मनुष्य जन्म 84 लाख जोनियों के बाद में मिला है। अभी साइंटिस्ट लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, एक दिन समझेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। पुनर्जन्म को वो नहीं मानते थे, अब पुनर्जन्म को भी मानने को बाध्य हैं। पहले पुष्प विमान को नहीं मानते थे, जयराम वहां से कैसे चले आए, अब तो वो मान रहे हैं। एक एक विमान पर 300-400 आदमी जा रहे हैं, अब तो मान रहे हैं। पहले आकाशवाणी नहीं मानते थे, अब आकाशवाणी भी धीरे धीरे मानने लगे। हमारी भारतीय जो वैदिक जो बातें थी, अब धीरे धीरे विश्व के लोग, विश्व के वैज्ञानिक यदि और अधिक रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कि कुछ आगे बढ़ जाएं, आत्मा के संबंध में कुछ विचार कर सकें। अभी ये विज्ञान विज्ञान नहीं है, अभी अज्ञान है। जिस समय आत्मा के संबंध में वो कुछ रिसर्च कर सकेंगे, शरीर कैसे चलता है, क्यों चलता है, इसमें इच्छाएं कहां से हुई, मरने के बाद में इच्छा कहां चली जाती है, इस पर रिसर्च होना चाहिए। हम कैसे सुखी हो सकते हैं, विश्व बंधुत्व कैसे आएगा, लोगों के प्रति प्रेम कैसे आएगा, इस पर रिसर्च होना चाहिए। नहीं? हम जगत को बर्बाद कर देंगे इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। वो तो आदमी तो मरेगा ही, मर जाएगा अपने आप, उसको बम से क्या उड़ाने की जरूरत है। ऐसा कोई चीज आविष्कार कीजिए, एक दूसरे से प्रेम बंधे, विश्व बंधुत्व की भावना है। ये सब नहीं हो रहा है। इसलिए परीक्षित महाराज जी कहते हैं, जी अपने कथा को बंद मत करें, आगे हमें सुनाइए ये कथा। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं वो आत्महत्यारे नहीं है, जो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण नहीं करते, आदर नहीं करते, वो आत्मघाती है। इसलिए प्रभु आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपनी हरि कथा को, अब हम दसम स्कंध में आ रहे हैं, समय नहीं, इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ी सी दसम स्कंध की कथाओं को आप लोगों के कानों में स्पर्श कराऊं। कृष्ण ने जन्म लिया, भादों की अष्टमी में जन्म लिया। कहाँ लिया जन्म? लोग कहते हैं कि मथुरा में कंस के कारागार में वो प्रकट हुए। ये बात ठीक है, प्रकट हुए, किंतु जन्म नहीं लिया हुआ। जन्म कहाँ लिया? यशोदा के कोख से गोकुल में जन्म लिया। जिसमें यहाँ पर प्रकट हुए, जैसे रामचंद्र जी के लिए भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, फिर अस्तुत जोरी, हाथ जोड़ करके वे स्तव स्तुति करने लगे। वैसे कृष्ण 16 वर्ष के बच्चे जैसे भूरा लेकेश, बड़ा ही सुंदर दिव्य चेहरा, दांत पूरे, अलंकारों से इत्यादि, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए प्रकट हुए। ऐसा कहीं जन्म नहीं होता। इसलिए प्रकट हुए भगवान, वहां पर भगवान है, किसी के जोनी से नहीं निकलेंगे, प्रकट हुए। और ठीक उसी समय में गोकुल में एक ही साथ में यशोदा जी के गर्भ से निकले, ठीक मनुष्यों का जैसा होता है। वहां पर नाड़ी लगी रही माता और पुत्र में, मथुरा में जन्म संस्कार नहीं हुआ, नाड़ी नहीं कटी, ब्राह्मण आकर के पवित्र नहीं किया, उनको स्नान नहीं कराया गया, किंतु ये सब काम कहाँ हुआ? नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महात्मना। नंद को आत्मज, आत्मज माने आत्म वही जायते पुत्र हो, आत्मा से जो उत्पन्न होता है। कृष्ण वहां पर प्रकट भये, कैसे? यशोदा माँ के गर्भ से निकले, इसलिए वहां पर जन्म लीला हुई। और यहाँ पर भगवान की आविर्भाव प्रकट लीला हुई, जन्म लीला यहाँ पर नहीं हुई। यही कृष्ण जा करके वसुदेव जी ले गए, और वहां पर जो नंद बाबा के यहाँ जो कृष्ण जो जन्मे थे, उनमें जाकर के ये मिल गए, एक हो गए। लोगों ने समझा नहीं, केवल नारद आदि ऋषियों ने इस चीज रहस्य को समझा। इसके बाद में वो बड़े होने लगे, पूतना आई 5वें दिन की 6ठे दिन मारने के लिए कंस की तरफ से। पूतना सबसे पहले अपवित्रता होती है, स्नान नहीं करना, मैल सब समय गंदे कपड़े रहना, ये भी एक अपवित्रता, किंतु ये नहीं, अधिक नहीं है। भीतर का दिल जब यह अपवित्र है, लोगों से क्रोध द्वेष हिंसा, ये बड़ा भारी मैल है, ये तो सावन देने से निकल जाएगा, किंतु भीतर का ईर्ष्या द्वेष, आज राष्ट्र विश्व में ऐसा कोई नहीं जो एक दूसरे से नहीं डरता। भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को शत्रु समझ रहे हैं, उसी तरह से विश्व में किसी का किसी पर भरोसा नहीं, परस्पर प्रीति नहीं, इसलिए ये सब भीतर की मैल है। ये मैल साबन से नहीं जाएगा, इस अंधकार सूर्य और चंद्र से नहीं जाएगा, ये हरि भजन और हरि नाम से ही होगा। इस चीज को समझने की चेष्टा की जाए, है ना? तो पूतना आई अपवित्र, कैसे? पीस लेकर के स्तनों में आई। कृष्ण ने उसको देखते ही आंख बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिया? हाँ, ये माता का बीज बना करके यशोदा जैसे आई है, और बेटा बेटा कह करके मुझको गोदी में उठा रही है, किंत नियत क्या है? कृष्ण को मार डालेंगे, इसलिए यह भक्ति नहीं। इसी तरह से जो लोग रुपया पैसा प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, वाइफ वाइन और वेल्थ चाहते हैं, ऊपर से गुरु बने हुए हैं, ऐसे गुरु से कोई संबंध नहीं। जो लोग सचमुच में भगवान के निस्वार्थ सेवक हैं, वे लोग संसार का कुछ उपकार कर सकते हैं। इसलिए पुतना बन करके मैया आई कृष्ण को मारने के लिए, और जो ही स्तन में उनको दिया, कृष्ण उसके प्राणों को भी खींच लिया, किंतु कृष्ण से लगे रहे, पूछना करिए छोड़ो 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 छोड़ो, मैं मरी मरी मरी। जब देखा नहीं छुड़ा सके, 10,000 हाथियों का बल उसके शरीर में था, उसने ऐसे कृष्ण को धक्का दिया, छोड़ो, नहीं छुड़ा सकी। कृष्ण आने आते उसके मुख को उसके स्तन में लगे रहे। यशोदा में कैसी, कृष्ण गोदी में बैठे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध जल रहा है, उफन रहा है। यशोदा जी ने कहा बैठो, नहीं बैठा, उसने मुख से पकड़ लिया और बंदर की तरफ में हाथ से भी पकड़ लिया, पैर से भी पकड़ लिया, यशोदा माँ को छोड़ेगा नहीं। और यशोदा ने एक धक्का दिया, ए हट, बस वो पर ब्रह्म का जो सारी शक्ति धरी रह गई और उड़ लेकर के बैठा दिया और चली गई। ये भक्ति का बल है। पुतना नहीं छुड़ा सकी, वो कंस के पास में भैया मुझे बचा, वो चली, किंतु बीच में ही वो गिर पड़ी और मर गई। इसी तरह से कृष्ण और आगे लीलाएं सब करने लगे। एक गाड़ी में दूध दही घी सब रखा था, कृष्ण के जन्म का दिन था। यशोदा जी पकवान और पूरी बनाने लगी हुई थी और उनकी सहेली आ रही थी और बधाई के कीर्तन हो रहे थे। उस समय में शकटासुर कंस का भेजा हुआ असुर अपना शरीर छिपा लिया हवा जैसा और गाड़ी में प्रवेश कर गया शकट में। कृष्ण उसके नीचे झूल रहे थे पल्ले में, और छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के साथ में खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। और उधर यशोदा मैया अपने रंग में रंगी हुई थी, कीर्तन कर रही थी, और सब सहेलियां भी कीर्तन करते हुए अपने घर का रसोई का काम सब कर रही थी। गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवे, उद्दुखले संघट तंडुलांश संघंटयंतो मुसलै प्रमुग्ध, गायन्ति गोप्यो जनितानुराग, गोविंद दामो धर्माधवे, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो। यशोदा जी के स्तन से दूध भरा था, अपने आप कृष्ण को स्मरण करके और तन्मय होकर के अपने कामों में लगी हुई, और शकटासुर रास्ता देखता हुआ आया कृष्ण को वध करने के लिए, पल्ले में झूल रहे थे गाड़ी के नीचे। गाड़ी के ऊपर में अपना सारा जोर लगा दिया और गाड़ी धीरे 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 जमीन में धसने लगी, और कृष्ण खेल रहे थे बच्चों के साथ में। कैसे खेल रहे हैं, कभी चूस रहे हैं अंगूठे को, कभी पैर का अंगूठा मुख में दे दिया, कभी ऐसे 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 पैरों को उछाल रहे हैं, कभी हाथों को उछाल रहे हैं। और इतने में वो ठोकर लग गई, जब गाड़ी नीचे आया तो पैर का ऐसे जो कर रहे थे वो लग गई ठोकर, और गाड़ी झट गई और उलट गई और उसके धूरे और ये सब कुछ टूट फूट गया और वो असुर मिल करके गिर गया। यहाँ पर गाड़ी क्या है, शकटासुर क्या है, पटी शकटासुर। गाड़ी कोई चीज रखी जाती है, बेदुकानी सब सबका ज्ञान है, बहुत इंटेलिजेंस है, विनो ऑल वेद उपनिषद शास्त्र भागवत रामायण पुराण एंड वीन कैन रिसाइड बट नथिंग, वी आर नो फॉलोइंग नथिंग। हम लोग उसको करते नहीं है, भगवान का नाम नहीं करते, सब जानते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, कर्म और ज्ञान में लगे थे, दिन रात अपने कर्मों में व्यस्त है। कुत्ता बहुत व्यस्त है, जा रहा हुआ बाबा, अरे भाई कहाँ जा रहे है, अरे बोलने की फुर्सत नहीं है, कुत्ता महाराज कह रहे हैं बोलने की फुर्सत नहीं है भाई, मैं बहुत व्यस्त हूँ। चलते चलते गए, दूर पर एक माइल का पत्थर पड़ा हुआ था, उस पर जाकर के पैर उठाया, पेशाब किया, फिर लौटे, बड़े व्यस्त होकर के चले। उनका यही काम है, व्यस्त हैं। इसी तरह से हम लोग किस लिए व्यस्त हैं, किस लिए नहीं जानते, ये किस लिए व्यस्त हैं। इसलिए यह है भार, शास्त्रों का, कर्मों का, ज्ञान का प्रारंभ हो रहे हैं और सहज रूप में जो भगवान का नाम होना होता है उस भगवान का नाम क्यों नहीं करते? 5 मिनट निकाल करके अपने व्यस्त जीवन से भगवान की कथाओं को रोज सुनेंगे, भगवान में अपने चित्त को लगाएंगे, जिससे हमारा भविष्य सब कुछ बन जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं करते। इसलिए वो शकटासुर वो कौन सा है? सब कुछ जानते हैं, भार वहन करते हैं, किंतु भगवान का भजन नहीं करते। पट इज शकट मीन करेज, कॉर्ड, ज्ञान, कर्म, योग, तपस्या, व्रत, होम, श्रद्धा, संयम, दान, ऑल आर यूटेंसिल वी आर गेटिंग ऑन दिस कार्ड, बट ऑफ नो यूज इफ यू डोंट रिमेंबर कृष्ण, चांट कृष्ण, हैव नो भक्ति जोग टू कृष्ण, एवरीथिंग इज लाइक दिस एंड कृष्ण विल वो सबको उलाद पुलाद करके रख देगा। इसलिए शकटासुर का वध हुआ और भी बहुत से दूसरे। कृष्ण अब कुछ चलने लगे हैं, घर के बाहर आ रहे हैं, बहुत नटखट बच्चा, श्यामला सुंदरी मूरत, जसोदा मैया ने यहाँ पर मयूर का पंख बांध रखा है, छोटी सी बांसुरी उसने ले ली है, अलबेला सा लड़का। जब घर से बाहर निकलने लगा, बलदेव और सखाओं को लेकर के गोपियों के घरों में घुस जाता और रखा हुआ मक्खन लेता और सबको देता। कभी उसके घर जाता, गोपी जितनी भी गोपियां थी, इस जन्म का संस्कार नहीं, पूर्व जन्मों का संस्कार था, उन्होंने तपस्या की थी। जब भगवान कृष्ण हमारे घर में आए, मक्खन चोरी करें, हमारा दिल चोरी करें, मक्खन नहीं, लोगों का दिल चोरी करने के लिए जाते थे। इसलिए कृष्ण गए, क्या किया, उसके बेटे से कहा, जे बेटा तुम जाकर के मैया से कहो जो तुम्हारा बछड़ा खुल गया है और गाय का दूध पी रहा है, अपने आप खोल दिया। और उसके बेटे से कहा जो कृष्ण का मित्र था, जाकर के मैया से कह दो अरे दूध पी गया गया सब। मैया दौड़ी, दूध को रक्षा करें, घर में घुस गए हजारों बच्चे सब और मक्खन खाने लगे। किसी गोपी ने उनको पकड़ लिया, अरे भाई क्यों तुम चोरी करने आया? कहिए मैं तो समझता था कि मेरा घर है, तेरा घर है, मैं तो यही समझता था कि मेरा। गोपी हंसने लगती और वो हाथ से छोड़ करके चले जाए। कभी यदि पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, तू चोरी क्यों करने आया? तो मैं चोरी करने नहीं आया था मैया, तो किस लिए आया था? मेरा बछड़ा गुम हो गया, गुम है समझते हैं, कहीं खो गया मेरा बछड़ा, मैं बछड़ा खुद ढूंढ रहा था। तो तेरा बछड़ा क्या हमारे इस गगरी में जिसमें कि मक्खन और घी है इसमें घुसा हुआ है? हाँ मैया इसी में वो कूद पड़ा था। कैसे देखें, हाथ लगाया और उसमें से एक मार्बल पत्थर का बछड़ा जो था खिलौना निकाल, देखो ये मेरा बछड़ा है, इसमें कूद गया था, मैं थोड़े तुम्हारा मक्खन खाने नहीं आया था। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया चोरी करते हुए, कहा चलो तुम्हारी मैया से कहूँ, तुम्हारी मैया मानती नहीं है कि तुम्हारा बेटा चोर हो गया। पकड़ करके ले गई सवेरे भोर में, जब वहां गई जसोदा जी से कहा अरे देखो जसोदा सखी जसोदे, तेरा बेटा बड़ा चोर हो गया और हमारे घरों में चोरी करता है, बड़ी प्रसन्न है किंतु फिर भी उलाहना दे रही है, जसोदा को ये पता नहीं है और कैसी कैसी ये सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाओं को करता है। इसलिए जसोदा जी को बतला तू भी जरा चख, इसलिए गई कहने के लिए। जसोदे मेरा लाला तो सो रहा है, हमारा तो लाला नहीं है, जरा देखूं इसका मुख देखूं। तो जरा मुख खोला तो देखा जो उसी का लड़का जो गोपी पकड़ करके लाई। और कृष्ण वहां पे मैया 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 देख हमको झूठ मूठ का ऐसे कहती है, और मैं जरूर जाऊंगा इसके घर में चोरी करने के लिए। ये परब्रह्म है, उनको चोरी की जरूरत नहीं है, मक्खन की जरूरत है, उनको प्रेम की जरूरत है, प्रेम के भूखे ये नंदलाला है, इसी के लीला करने के लिए आए हैं। अब वो 3.5 वर्ष के हो गए, जसोदा जी अपने सब नौकरानियों को छुट्टी दे दी, दासियों, हमारा बेटा चोरी करता है मक्खन, तो इसका मतलब यह है हमारे घर में मक्खन मीठा नहीं होता। आज अच्छी अच्छी गायों को पद्मगंधा, कमलगंधा इत्यादि गायों का दूध अपने हाथ से निकालूंगी और अपने हाथ से जमाऊंगी गर्म करके, और जब दबी और अपने हाथ से आज मथूंगी और मत करके कृष्ण को जो अच्छा सा मीठा मक्खन होगा ताजा मैं खिलाऊंगा। देखे कैसे दूसरों के घर में जाता है, इसलिए बच्चा जाता है। झट दूध निकाला, शाम को उन्होंने गर्म किया, उसमें कुछ दे दिया, वो जम करके सवेरे एकदम दही हो गई। इतना मोटा मलाई पड़ गया उसके ऊपर में, मोटी मलाई। और अपने आप यशोदा मंथन करने बैठी, एक स्तंभ था ऐसा खंभा, उसमें रस्सी लपाट दी और मंथनी होती है उसमें लगाया और घर इस प्रकार से करने लगी। बहुत ही सुंदर, कृष्ण की मैया ना कितनी सुंदर होगी, बेटा इतना सुंदर तो मैया जरूर सुंदर होगी। सुंदरी रेशम की वस्त्र पहने हैं, अंग उनके भीतर से झलझल कर रहे हैं, इतने अद्भुत, कमर बहुत पतली सी, पस्तक्षल चौड़ा और मथने से श्वेत बिंद आ रही है, मानो ये लड़ियां गिर रही हैं, मोती की लड़ियां झर रही हैं। और गा रही हैं तन्मय होकर के, क्या गा रहे हैं, वही गोविंद दामो धर्मा धवेति, गोविंद दामो धर्मा धवेति, गोविंद दामो धर्मा धवेति, गोविंद दामो धर्मा धवेति। जब मथ रही हैं उसे ध्वनि निकलती है मानो मृदंग का पिछला भाग, और हाथ में सुनने की जो चूड़ियां कंगन है वो झन झन जो बज रही है मानो वो मजीरे हैं। मृदंग क्या कहता है, धिक तान धिक तान, धिक धिक तान, मन धिक्कार है उनको, फाइव टू देम फाइव फाइव। जो कृष्ण का भजन नहीं करते उनके लिए धिक धिक तान, उनको धिक है। जो कृष्ण का भजन नहीं करते खाने पाने और जगत में कामों में मस्त हैं, नहीं जानते कि मृत्यु यहाँ पर मंडरा रही है, उनको धिक है, उनको धिक है। तो इस तरह से वो मृदंग जानू बज रहा और बड़ा सुरीला कंठ कोयल को भी मात कर दे ऐसा सुरीला कंठ, और वो तन में होकर के गा रही है, कृष्ण सोए हुए हैं पलंग पर सवेरे।